قل لو كان معه آلهة كما يقولون. कह दीजिए ए नबी, आप कह दें अगर अल्लाह के साथ और भी इलाह होते जैसे ये दावा करते हैं कि अल्लाह के और भी कोई उसके बेटा है, कोई बेटियां बताते हैं या और शरीक बताते हैं, अगर जैसे ये कहते हैं उस तरह अल्लाह ताला की साथ वाकई इलाह होते अगर, तो इज़ल लबतगौ इला दिल अर्शी सबीला, तो तब क्या होता, वो तो तलाश करते अर्श वाले के लिए रास्ता। इस आयत में डिफरेंट माने मुफसरीन ने बयान किए, सभी ठीक हो सकते। एक माना ये कि अगर और भी इलाह होते तो वो भी तो मखलूक ही होता, इसलिए कि हर कोई मानता है, मुशरिक भी मानता है कि इस कायनात का खालिक एक ही है। अगर और भी इबादत के लायक है तो वो तो सब मखलूक है, और मखलूक का काम क्या है कि वो खालिक की बंदगी करें, ये खालिक का हक है। हदीस में आता है ना, बुखारी में हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने हजरत मुआज बिन जबल से पूछा था कि अल्लाह ताला का हक क्या है, उन्होंने फरमाया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, फरमाया अल्लाह का हक ये है अपनी मखलूक के ऊपर कि मखलूक सिर्फ अल्लाह की बंदगी करे। फिर पूछा ये जानते हो मखलूक का, बंदों का हक अल्लाह पे क्या है, तो बंदों का हक अल्लाह पे ये है कि जो उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता अल्लाह ताला उसको अजाब नहीं दे, ये बंदों का हक है। लेकिन अल्लाह का हक क्या है हमारे ऊपर कि हम सिर्फ उसकी इबादत करें, ये उसका हक है, हम उसको उसका हक दें, जब हम उसको उसका हक नहीं देते तो ये जुल्म होता है। फिर ये है वो जो जुल्म अजीम है, शिर्क, सबसे बड़ा गुना। और आप देखें इधर शिर्क है ना, ये सबसे बड़ा गुना है, इसका मतलब तौहीद जो है सबसे बड़ा नेकी का काम है, इसे उलट कर लेना। और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा इसलिए वही कलिमात हैं जिसमें उसकी तौहीद बयान होती है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो कलिमा है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, अफजल जिक्र है, ये जिक्र में भी सबसे जबरदस्त अफजल जिक्र। तो तौहीद का बयान करना बहुत बड़ा अमल है, इसी की बेस के ऊपर नेकियां कबूल होंगी कयामत के दिन, इसी पे कोई मौत पाता है, वफात पाता है तो उसके लिए जन्नत है। यही वो कलमा है जिसकी बेस पे कयामत के दिन किसी इंसान की नेकियां और बदियां तुलेंगे, अगर ये कलमा नहीं है तो नेकियां और बदियां तुलने का तो सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, इसलिए क्योंकि फिर तो सीधी जहन्नम है। यही वो कलमा है कि सुबहान अल्लाह, आसमान जमीन इनको सबको एक जंजीरों में जकड़ दिया जाए और उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह को मारा जाए तो सब रेजा रेजा हो जाए। यही वो कलमा के सातों आसमान जमीन एक तराजू पे रख दी जाए, दूसरी तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह उनसे ज्यादा वजनी है, ये छोटी बात नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जो है ना बहुत बड़ी बात है जो इंसान डिक्लेयर करता है। लेकिन ये समझ के बोलने की बात है, ये इसके ऊपर ईमान रखने की बात है कि कोई इलाह है ही नहीं सिवाय अल्लाह के, ये डिक्लेयर करना नहीं है कोई इलाह नहीं, सबकी नफी पहले करना। इंसान नफी नहीं करता, तो इंसान कहता है हाँ अल्लाह इलाह है लेकिन उसके साथ और भी इलाह है, यही तो शिर्क है। और इसी कलमे को अहसनुल हसनात कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये सबसे अच्छी और बेहतरीन नेकी है, सबसे वजनी अमल मीजान में ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। हशर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का सबब, अहम सबब यही कलमा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये वो कलमा है जो अल्लाह ताला के हजूर खुद पहुंच जाता है, कोई चीज इसको रोक नहीं सकती है। जो बंदा इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं इस कलमे के लिए, यहां तक ये कलमा अर्शे इलाही तक पहुंच जाता है। बशर्ते के कहने वाला गुनाहे कबीरा से बचता रहा। तिर्मिजी में ये रिवायत है। तो आपको पता है ना, पाकीजा कलमात अल्लाह ताला की तरफ चढ़ते हैं, तो ये वो पाकीजा कलमा और ये वो मुबारक कलमा है जिसके कहने वाले के लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया ना, वजू करे और उसके बाद जिसने वजू अच्छी तरह किया उसके बाद ये कलमा पढ़ा, उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, जिस दरवाजे से चाहेगा दाखिल हो जाए। ये वो कलमा है, इतना अजीम है, ये समझ ले जन्नत की चाबी है। तो ये जो सच्चाई के साथ बोलता है, जो इसकी गवाही देगा, तो बुखारी में रिवायत है कि अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग पर हराम कर देगा, तो जहन्नम से महफूज हो जाएगा। तो इसलिए ये मामूली बात नहीं है, याद रखिए, ये ऐसी बात है, ये ऐसा कलमा है कि जो सबकी नफी कर देता है कि कोई और माबूद है ही नहीं। और ये कलमे पे जब हम ईमान रखते हैं ना, उसके बाद समझ जाए कि हमने सबकी नफी कर दी भी, उसके बाद क्या पॉइंट रह जाता है कि हम कहीं जाके औलाद मांगे, कहीं जाके शिफा मांगे, कहीं जाके रिस्क मांगे, कहीं किसी के दर पे जाके सजदे करें, किसी के आगे हाथ उठाएं, क्योंकि ये सब मुरासे में इबादत है। याद रखिए, अभी आगे भी हम इसके ऊपर बात करेंगे, दुआ करना, नमाज पढ़ना, ये सब रोजा रखना, कुर्बानी करना, सदका करना, नजरों नियाज करना, ये सब इबादत की मरासे में, इबादत के रिचुअल्स हैं, इबादत का पार्ट है। समझ लें आप, समझ, अब पार्ट्स ऑफ इबादत हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इबादत समझ लें। अब ये जब आप इबादत इबादत तो कहते रहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप ये कहते रहते हैं, इसकी रट लगाई हुई है, उसकी तस्बीह कर रहे हैं, फिर उसके बाद जाके कहीं और खड़े हो रहे, कह रहे हैं ये गौसे आजम है, ये मुश्किल कुशा, ये हाजत रवा, ये फिर कैसे हो गया? नजर नियाज किसी और के नाम की दे रहे हैं, कुर्बानी किसी और के नाम की कर रहे हैं, नमाज भी कोई गौसे आजम के नाम की पढ़ रहा है, किसी ने किबला अपना अजमेर बनाया हुआ, ये क्या बातें हैं? फिर तो सबकी जड़ कट जाती है जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह समझ के कहते हैं। इसका मतलब पता ही नहीं हम क्या कह रहे हैं, शऊर ही नहीं। हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे मुल्कों में देख ले आप किस तरह शिर्क कर रही है और साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती जा रही है, समझ ही नहीं, पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। तो अगर तुम जिस तरह कहते हो इनके पास भी इख्तियारात हैं, तो तुम तो मानते हो ना, खुद मानते हो कि खालिक एक है, तो अगर एक खालिक है तो उसका मतलब खालिक कोई और है नहीं, बाकी सारी मखलूक है। मखलूक का तो काम है कि वो खालिक की बंदगी करे, तो जिनको तुम मान रहे हो इसका मतलब वो तो मखलूक है, क्या ये सारे खालिक है? नहीं, तुम खुद कहते हो एक खालिक। लॉजिकल बातें हैं ये सारी, फिर भी क्यों नहीं समझ आते? ये अपील करती हैं जहन को, ये इतनी इनके अंदर ये सेंस मेक करती हैं, फिर क्यों हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं? क्यों हम फिर वही शिर्क के धंधों में पड़ जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि उसने कह दिया, उसने कह दिया। यहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं, यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता, यहाँ पे ये होता, ये कहानियां किसने बना दी, इनको किसने बता दिया? खालिक तक देखें, खालिक तक पहुंचने का उसकी उसने दुआएं कबूल कर ली है ना, जिस रब ने खुद बता दिया ये सब कुछ हमें जो कुरान में है, तो फिर उसके बाद फिर इनकी बातों पे आप यकीन करते कुरान की बात छोड़ के, क्योंकि इसने कह दिया कि यहां से सब कुछ मिलता है, कुरान की बात आपने पीछे कर दी, कुरान की नाउजुबिल्ला बात को आपने झटक दिया कि ये बात गलत है क्या, और उनकी बात सच्ची है?